राजकुमार बालीसेन कुमार थे। भाई सेन कुमार के राजा श्रमिक ने रानी जेलना ने 32 विवाह किए थे, एक से एक सुंदर कन्याओं को ढूंढा था और 32 शादियां की थी उनकी, पर इतनी शादियां होने पर भी भारी सेन कुमार की दृष्टि किशोर थी। वे जब उपवास करते थे अष्टमी चौदस के दिन, तब स्मशान भूमि में जाकर मुनि के समान खड़े होकर के सारी रात ध्यान में बिताते थे। बतलाइए आप, 32 स्त्रियां होते हुए भी राग रंग में इतने नहीं फंसे, और अब आजकल की एक पंचम काल की क्या दुर्घटना है, उसको क्या कहें। एक दिन जिस दिन बारिशें मुनि रात उस स्मशान भूमि में चतुर्दशी के दिन खड़े ध्यान में अपना ध्यान कर रहे थे, उसी दिन नगर की वेश्या ने कीर्तिमती सेठानी के गले में रत्नमय हार देखा था। वह हार ऐसा अपूर्व रत्नों का था, चमक रहा था। वेश्या जाकर अपने घर पर उदास होकर बैठ जाती है और उसका प्रेमी विद्युत चोर आता है। जब विद्युत चोर आता है शाम को, पूछता है कि आज उदास क्यों हो। विश्वा ने कहा, उदास के कारण पूछना चाहते हो, क्या कर सकते हो। उदासी दूर। चोर ने कहा, हाँ आपके लिए तो मेरा जीवन अर्पण है, आपके लिए तो मेरा शरीर अर्पण है, आप कहो तो। अच्छा, तो मेरे लिए कीर्तिमती सेठानी का हार चाहिए। अरे वहां तो बहुत एक से एक चौकीदार बैठे हैं, कैसे प्रवेश करूंगा उनके महल में। तो कहते, अभी तो तुम कहते थे कि मेरा जीवन अर्पण है, अब तुम ऐसी कहने लगे। जाओ जाओ, आज से हमारे दरवाजे पर नहीं आना। कहते हैं, भोग बुढ़े बोग बढ़ावे, देरी है जग जी के, बेसर हुआ विपा कहती सेवत लागे नीके। उस चोर ने नहीं सोची कि कहती है तो जाओ चलो दे चले। उसने अपनी जान की बाजू लगा दी और किसी प्रकार से शैतानी के मन में प्रवेश कर गया, और किस प्रकार से उसने शैतानी के गले से हार निकाल लिया। हार निकाल करके जब भागता है, उसने नहीं समझा कि इसके लिए किस प्रकार छुपाना चाहिए। मुट्ठी में दाग का धागा तो उस रत्नों की ज्योति चारों ओर सूर्य के किरण के समान फैल रही थी। कोतवाल ने अपने सिपाहियों को पीछे करके और पीछे से दौड़ता है। चोर भागता जाता है। चोर ने सोचा कि अब मेरा बचना कठिन है, पीछे करें कोतवाल आ रहा है। श्मशान भूमि में मुनि के समान खड़े बारिशें कुमार को देखकर चोर ने उनके पांव के यहां वह हाथ फेंक दिया और जाकर कोई वृक्ष पर छुपकर चढ़ गया। अब कोतवाल और सिपाही आते हैं बारिशें कुमार के लिए, क्योंकि वो तो हार धमक रहा था, निरकाश दे रहा था। उठाकर हाथ कहते हैं, हाँ धन्य खूब बन गई जात हो, तुम संसार खून प्रजा खून ठगने के जाने ये नाटक कर रहे हो, मुनि के समान चतुर्दशी को पास कर लाओ, स्मशान भूमि आके खड़े हो गए, कोई जाने पिताजी जाने माँ भी जाने सारी जनता जाने कि ये तो बड़े धर्मात्मा हैं, और इतने खड़े हो गए, चलो राजा के पास में तुम पेश करो। पर बारिश है कुमार तो अपने ध्यान में नहीं है, वे नहीं जान रहे कि को का कह रहा हूं, और कोताल ने अनेक प्रकार की बातें करी, तुम राजा होकर प्रजा को ठग रहे हो, क्या कर रहे हो, चलो उनका हाथ पकड़ा और खेच पीते ले जा रहे हैं, और जाकर खेच कर राजसभा में खड़ा कर तो मोने और मोन हो गए, जब तक ये उत्सव नहीं चलेगा तब तक के लिए मेरे लिए बिल्कुल सब चीज का त्याग है। राजा सैनिक क्यों ही देखते हैं, वो कुलकुहल कहता है कि देखिए आपके राजकुमार के तो चरित्र देखिए, ये तो दुनिया को ढोंग बता रहा है, आप देखिए हार हार लेकर शैतानी का भागा शमशान में खड़ा होकर तप कर रहा। राजा सैनिक ने कुछ नहीं कहते, बिना विचारे जो करे तो पीछे पछताए, तो काम लगा रहे अपन जग में हुए हंसाए, जग में हुए हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग न मने न भावे। राजा ने फौरन आदेश दे दिया कि जाओ इस दुष्ट का स्मशान भूमि में जाकर जहां से पकड़ा वहीं खड़ा करके शीश काट दिया। बतलाइए राजा ने इतना नहीं सोचा, बेबच्ची से राजकुमारी कहां जाएगी क्या होगा, जल्लाद साथ में है, और वह कोतवाल जाकर वहां पर पहुंचता जहां खड़े थे वहीं खड़ा कर देता है, और तलवार खींच करके अब राजा का आदेश है, इनके आदेश के लिए छोड़ नहीं सकते, कुमार की गर्दन पर तलवार चला देता है। जैसे ही तलवार चलाता है फूल की माला हो जाता है, और आकाश से देवों की जय जयकार होने लगती है, बारिश सेन कुमार की जय हो जय हो। देव कुंज भी बाजे बजाने लगते हैं, और स्वर्ण सिंहासन रचा जाता है, उस पर बारिश सेन कुमार को बैठा कर और देव चोट होने लगते हैं। सारे आदमी कोतवाल में सिपाही दौड़े दौड़े राजा सैनिक के पास पहुंचते हैं, महाराज उसे तो इस प्रकार का हो रहा है, अरे ये तो झूठा है तो तुम्हारा लगाना, और अब कहां पुत्र, अब कहां पुत्र, अब तो राजा भूल भूल हो जाता है, सिंहासन से उतर कर वैसा ही उपनय पांव दौड़ता है, कहता है हे पुत्र मेरी गलती क्षमा करो, मैंने गलती जो करी वो क्षमा करो, पुत्र से गलती की क्षमा मांग रही, ये धर्म ऐसा है भैया, जब आ जानो समझा में तुम्हारा जाने आपकी समझ में आ गई हो चाहे आ गई हो, कि एक जगह पुत्र था एक जगह आदर हो तो हित काट के ले आओ, पर अब देखो क्या हो रहा है कि हाथ जोड़ा खड़ा है, चलो तुम्हारी माता भिलख रही है, तुम्हारी रानियां भिलख रही है, अब सबकी खबर आ गई, जब नेती खबर के भिलखेंगी को है, और बारी शेर कुमार कहते हैं कि हे पिता, तुम प्रजापाल हो, तुम्हारा कर्तव्य है कसूर वाले कसूर को दंड देने का, तुम्हारा न्याय है करने का, सुखिया है, आपको कोई दोष नहीं है, पर अब हम घर नहीं जाए। क्यों घर नहीं, घर क्यों नहीं जा? अरे 32 रानियां हैं, तुम्हारी माता बिलख रही है, चलो। नहीं, अब कहां रानियां और कहां माता और कहां पिता और कहां राज और कहां पाल। अगर हम भगवान जिनेन्द्र देव का स्मरण नहीं कर रहे होते तो गर्दन कहीं दिखाते, हम कहीं दिखाते, अभी तक तो का हो जाते। लेकिन जिनकी शरण में हमारी रक्षा भई है, जो हम पंचपन व्यक्ति का स्मरण कर रहे थे उनके कारण हमारी रक्षा भई है, जो कहां देव आते, कहां हमारी गर्दन से धूल की माला फहराते, अब तो उन्हीं की शरण में जाएंगे। बस पंचपन व्यक्ति की शरण में जाऊंगा, अब घर नहीं जाऊंगा। और बारीसेन मुनिराज, बारीसेन ने चल दिया, मुनिराज के चरणों में मस्तक टेक दिया। सारी रानियां रोती रही, माता रोती रही, प्रजा रोती रही, है? जिसका राजकुमार और इतनी रानी छोड़कर चला जाए, उस प्रजा का, उस रनवास का क्या हाल होता होगा, है? पर मोह नींद के जोर जगवासी भूमि सदा कर्म चोर चहूर सर्वस्व नहीं। और मुनिराज चले गए जाकर दीक्षा धारण कर मुनि हो भैया। ऐसी विचित्र दशा है, अपने लिए क्या करना है, अपने लिए यह श्रावक कुल कैसे मिलो, बड़ी मुश्किल से मिलो, कितने आप और उन्होंने कितने पुण्य किया, कितना भगवान भक्ति की ऐसा ऊंचा कुल मिला, और धन पैसा भी मिला, शरीर भी अच्छा मिला, सुंदर मिला, सब प्रकार के देखने में पाप में कीट में अकल में होशियारी में सब प्रकार का कोई कसर नहीं है। अब फिर कसर रह गई थी बाकी, सुभाविक पूरी आपने कर ली, झूठो मीठो खादे की कसर रह गई थी। ये श्रावक कुल ने कहूं तो हाथ में सूत्र के हाथ के पानी से हाथ नहीं मटिया है, सोच के सोच को अगर गए हैं लोटल बैठे हैं, अगर दसनों कर लगे तो क्या तो दे दे माला कम पानी दे देंगे तुम जो लोटा मटिया लो। अब आपके फ्लैश में जान लगे हो, पहला तो करोड़पति भी हो तो जो लोटा लगे बाहर ही जाते हो, तो उसने नहीं खड़ो है, अब उसके लिए कोई अच्छा आदमी पानी देगा जब हाथ मटियाए, हाथ मत जाते पानी नहीं लो, और आप लोग पीने के नाने पानी रह रहे, भोजन भी अब उन्हीं के हाथ में करने लगे और झूठो मूठो भी नियत डालने लगे। भैया हमारे कहने को मतलब जो है, हमारे कैसे ऐसी ने मानो तो हम तुमसे और विनय करके कहें, हाथ जोड़ के कहें, भैया ये कर्म छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, बात मान, ये नरक की गति है, नरक में जाना पड़ेगा। आप धन कितने हुए, करोड़पति अरबपति खरबपति, वो धन तुम्हें कहूं स्वर्ग मुक्त नहीं ले जा सकता। राजा श्रीनक ने एक दिन मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया था, जिसका भोग फल कितना भोगना पड़ा हुआ, राजा श्रीनक कितना उत्कृष्ट श्रावक हो गया था बाद में, जिसने 60,000 कृष्ण भगवान महावीर स्वामी से किए हैं और कितने कितने शास्त्रों की रचना हुई है, पर भी उसको पहले नरक की यात्रा करने पड़ी है। बात ऐसा होता है, मूर्छा नहीं करो, धन कम कमाओ तो भलो कमाओ, आमदनी कम हो तो रहने दो, लेकिन न तो होटल में खाओ, न शूद्रों को खाओ, न खोटो पानी पियो, भगवान की भक्ति करो और छनो पानी पियो, शुद्ध भोजन दिन में करो। श्रावक हो आप लोग, कोई दूसरे नहीं है, श्रावक को धर्म है ना, जो धर्म तुमने करो तो का शूद्र करे, उनके लाने नहीं लिखो आदिनाथ भगवान ने, जो धर्म आप ही खो लिखवाए, श्रावक कुल को पहले नंबर नाम दिया है, है? और इसके बाद में छत्री और बैस और बाद में सूर्य का नाम। आप कैसे भूले भटके हो, विचार तो करो, और नहीं करने तो भैया हमारे हाथ पे गिलास में धरो, हम हाथ जोड़े थे और भगवान जी ने किया, हाथ पांव ने सूझो, नहीं आ के भगवान को अभिषेक करो, देखो जो काम करने हो मंदिर में नहीं आओ, ये कोई जो काम छोड़े हो वही भगवान की पूजा करे, तुम पूजा कर रही हो भाई नहीं है, शाम को रात को तुम बहुत काम कर रहे हैं और सवेरे भगवान की जय जयकार करने लगे, जो कर कर रहे हैं आपको नहीं है, हुई हो आप पैसा वाले बने रहो, हमें डर नहीं लग रहा आपको, क्या देखो आप भगवान की पूजा करो तो ये काम छोड़ो, तो आपके वो है हम, और महाराज को आहार देने हैं तो ये खोटे काम छोड़ो, भगवान के हाथ पर गया दर्द न।
जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितो उपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हे सयामे, पूजूं हे सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं हे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, भगवान श्रेयांसनाथ स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।
एक पवित्र दिन पर अपने जीवन को पवित्र बनाने का विचार करने बैठे हैं। बुंदेलखंड में हर त्योहार को पावन कहते हैं, आज पावन का दिन है, आज पर्व का दिन है, तो हर त्योहार हमारे जीवन को या हर पर्व हमारे जीवन को पवित्र बनाने आता है। आज का दिन संबंधों की पवित्रता का दिन है। हम लोगों ने पशु जगत से ऊंचे उठ करके मनुष्य होकर के विभिन्न प्रकार से संबंध निर्मित किए हैं। पशु जगत में तो जब तक बेटा माँ का दूध पीता है तब तक वो माँ मानता है, उसके बाद नहीं मानता, न वो उसकी सेवा करता है। लेकिन यहाँ हमने माँ और बेटे के बीच का रिश्ता ऐसा बनाया है कि जीवन भर दोनों अपने उस रिश्ते की पवित्रता को कायम रखते हैं। इतना ही नहीं, हमने और भी रिश्ते बनाए हैं और इन रिश्तों की गरिमा का निर्वाह करना भी हमने सीखा है। भोग भूमि के समाप्त होने पर कर्म भूमि की जब शुरुआत होती है तब कुलकर हमें यही तो सिखाते हैं कि कैसे एक परिवार में, एक समाज में, और हम एक साथ हिलमिलकर रहें। आज का दिन वैसा ही दिन है। हम अपने परिवारजनों की रक्षा का दायित्व तो अपने ऊपर लेते ही हैं, लेकिन आज का दिन तो धर्म और धर्मात्मा की रक्षा का भी दायित्व हमारे ऊपर है, उनकी सेवा करने का भी दायित्व हमारे ऊपर है। इस दायित्व को, इस जिम्मेदारी को समझने का दिन है आज का दिन। तीन तीन संयोग एक साथ लेकर के आया है आज के दिन भगवान श्रेयांसनाथ को निर्वाण हुआ, आज के दिन महारानी सीता के लव और कुश उत्पन्न हुए, आज के दिन विष्णु कुमार महामुनि महाराज ने अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के उपसर्ग का निवारण किया और धर्म की परंपरा को सुरक्षित किया। हम विशेष रूप से आज का दिन विष्णु कुमार मुनि महाराज के धर्म के प्रति वात्सल्य और धर्मात्मा के प्रति प्रेम का दिन मान करके मनाते हैं। इसके पीछे एक घटना छिपी हुई है। श्री वर्मा नाम के कोई राजा रहा करते थे, भगवान अरहनाथ स्वामी के समय की बात है, 18वें तीर्थंकर के समय की, और उनके 4 मंत्री थे जो कि जैन धर्म के विरोधी थे, बलि, नमुच, बृहस्पति और प्रह्लाद। राजा एक बार अपने शहर में आए हुए, अपने देश में आए हुए अकंपनाचारी आदि 700 मुनि महाराजों के दर्शनार्थ वहां पहुंचते हैं। मंत्री उन मुनियों की बहुत निंदा करते हुए राजा से कहते हैं कि वे सब तो बिना उद्यम किए भोजन करते हैं, और भी बहुत सारी बातें जो उनके मन में आई वो सब राजा को कही। आप उनसे शास्त्रार्थ करिएगा, ये बिल्कुल बुद्धू होते हैं, आप हरा दीजिएगा उनको शास्त्रार्थ में और देश से निकाल दीजिएगा, ऐसा वो राजा को कहते हैं। राजा उसी उद्देश्य से और संग जहां रुका है वहां उस तरफ जाते हैं। तो जो भद्रबाहु अकंपनाचारी महाराज थे, उनको पहले ही इस बात का आभास हो जाता है कि कोई संग पर विपत्ति आ सकती है, इसलिए कोई भी संग में बोलेगा नहीं। लेकिन जब उन्होंने ये आदेश दिया, उस समय एक मुनि महाराज श्रुतसागर जी वो आहारचर्या के लिए गए थे, उन्होंने इस बात को नहीं सुना। और जब राजा लोग मंत्री सब संग में आए तो कोई नहीं बोला, तो और क्रोधित हो गए। मंत्रियों ने कहा, देखा सब बुद्धू हैं, सबने मौन ले रखा है, इसलिए कि आपसे बोलना नहीं पड़े। और राजा नाराज होकर के जब लौट रहा था तो चरिया से वहां से श्रुतसागर मुनि महाराज लौट रहे थे। उन मंत्रियों ने कहा कि देखो उन्हीं में से एक ये आ रहा है, इनको रोक करके इनसे प्रश्नोत्तर करो। और वहीं रास्ते में ही और उन्हें रोक करके और प्रश्नोत्तर शुरू कर दिए। श्रुतसागर महाराज बहुत विद्वान थे, राजा उनसे शास्त्रार्थ में परास्त हो गया, तब और अधिक क्रोधित हो गया। महाराज संघ में वापस लौटे तो अकंपनाचारी ने कहा कि यह तो ठीक नहीं हुआ, जाओ जिस स्थान पर शास्त्रार्थ हुआ सारी रात वहीं ध्यान में लीन रहो, क्योंकि बाकी संघ पर उपसर्ग आ सकता है। श्रुतसागर मुनि महाराज बहुत सशक्त और दृढ़ निश्चयी थे, इसलिए तपस्वी भी थे, वे रात्रि में वहीं जिस स्थान पर शास्त्रार्थ हुआ वहीं पर ध्यानाग्र हो गए। उन चारों मंत्रियों ने, जिनका कि अपमान हो गया था शास्त्रार्थ में, उन्होंने उन पर उपसर्ग करने के लिए चारों ने चारों दिशाओं में खड़े होकर के तलवार चलाई, लेकिन धर्म के प्रभाव से या मुनि महाराज की विशुद्धि से, और वे चारों वहीं स्तब्ध होकर के खड़े रह गए, आक्रमण नहीं कर पाए। और सुबह की रोशनी में सारी प्रजा ने उन्हें तलवार से मुनि को मारते हुए किलित देखा तो सबने उनको उनका बहुत तिरस्कार किया। श्री वर्मा राजा ने भी उन्हें देश निकाला दे दिया। वे पद्म राय के राज्य में पहुंचे और वहां कोई सिंहबल नाम का एक राजा जो कि पद्म राय को मुश्किल में डालता था उसे जीत करके पद्म राय का विश्वास जीत लिया और एक वरदान ले लिया। और एक बार जब अकंपनाचारी आदि 700 मुनि महाराज विहार करते हुए पद्म राय के राज्य में पहुंचे तब पद्म राय से अपना वरदान मांगकर उन चारों मंत्रियों ने 7 दिन का राज्य ले लिया। पद्म राय महलों में चले गए और राजकाज बलि आदि 4 मंत्रियों के हाथ में हो गया और उन्होंने जहां पर संघ रुका था उसके चारों तरफ बाड़ी लगा करके और एक यज्ञ शुरू कर दिया जिसमें सड़े गले मांस और चमड़ी इत्यादि को जलाना शुरू किया। सारे मुनि महाराज ध्यान में लीन हो गए और उनके चारों तरफ इस तरह से यज्ञ का धुआं उठने लगा। श्रवण नक्षत्र को आचार्य सारचंद्र ने मिथिला के वन में अचानक रात्रि में हिलते देखा और अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि बहुत बड़ा उपसर्ग मुनियों पर कहीं हो रहा। बाजू में उनके एक छुल्लक बैठे हुए थे पुष्पदंत, उन्होंने जो है और जब उनको रात्रि में, मुनि महाराज तो बोलते नहीं रात्रि में, पर उनकी आह सुनकर के और वे समझ गए कि कहीं ना कोई बात है। इस उपसर्ग को कैसे टाला जाए तो महाराज ने कहा कि इसे सिर्फ विष्णु कुमार मुनि महाराज टाल सकते हैं, उन्हें पहुंचते हैं जहां की विष्णु कुमार मुनि महाराज तपस्या में लीन और उनको बताते हैं। तब उन्हें आश्चर्य होता है कि मुझे तो ये रिद्धि है ऐसा मालूम ही नहीं। तो अपना हाथ फैलाते हैं, फैलता चला जाता मानुष उत्तर पर्वत तक फैल जाता है। समझ जाते हैं कि विक्रिया रिद्धि हो गई, जैसा चाहे वैसा रूप बना सकते हैं। और वे जाते हैं, पद्म राय उनके ही संबंधी थे, भाई थे, तो पद्म राय को समझाते हैं कि ये क्या किया तुम। तो बोलते हो हमारे बस में नहीं है, हम उन मंत्रियों को 7 दिन के लिए राज्य दे चुके हैं, अब आप ही कुछ उपाय करें विष्णु कुमार मुनि महाराज। तब एक बटुक ब्राह्मण का वेश बना करके, क्योंकि वे मंत्री उस यज्ञ के दौरान किमिक्षित दान दे रहे थे, जो जो मांगेगा उसे वो दान देंगे, तो ये बटुक ब्राह्मण का वेश बना करके जाते हैं। बहुत छोटा सा कर्प, मुश्किल से 1-2 फीट का, इतने छोटे से वामन का वेश बना करके और पहुंचते हैं। वैष्णव संप्रदाय में इसी को वामन अवतार माना है, ये ध्यान रखिए। ये घटनाएं दोनों जगह मिलती हैं पर अलग अलग ढंग से मिलती हैं। तो वो वामन के वेश में वहां पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि यजमान मुझे कुछ दोगे, मांगो क्या चाहिए। मुझे 3 पग जमीन चाहिए जिसमें कि मैं अपनी झोपड़ी बना करके रह सकूं तुम्हारे राज्य। अरे 3 पग क्या, इतने छोटे से तो तुम्हारे पग हैं, कुछ और मांग लो। नहीं, पहले ये कहो कि 3 पग दूंगा फिर बाद में देखूंगा। अच्छा चलो मैंने कहा कि दूंगा, नहीं जल उठाओ गंगा जल और डालो और प्रतिज्ञा करो, जो प्रतिज्ञा का ढंग है उस प्रतिज्ञा करवा करके। और पहला पग जो उठाया तो सीधा सुमेरु पर्वत पर और दूसरा उठा करके रखा मानुषोत्तर पर्वत पर, पूरा 2.5 दीप नप गया। तब कहा कि तीसरा कहां रखूं। कहते हैं कि आकाश में वो पैर उनका डोलता रहा, देवों ने क्षमा याचना करी, खुद बलि ने क्षमा याचना करी, तब जाकर के उन्होंने अपनी विक्रिया को समेट करके और इतना ही कहा कि इस उपसर्ग को दूर करो। और वो उपसर्ग दूर हुआ। श्रावक जो 1 हफ्ते तक उपसर्ग चला उससे व्यथित होकर के और स्वयं आहार जल छोड़कर बैठे थे, इसलिए 700 मुनियों के लिए 700 घरों में आहार दान की प्रक्रिया उस दिन संपन्न हुई। और जिनके यहां पर आहार दान का अवसर नहीं मिला, उन्होंने जिनको आहार दान का अवसर मिला उन सबके हाथ पर सात रंग का एक धागा बांध करके और इस पर्व को मनाया और तब से इसको सलूना पर्व भी कहते हैं। और अभी भी अन्य मतों में सोन बना करके और उनको राखी पहना करके आहार दे करके और फिर ये प्रक्रिया की जाती। वो सोन क्या है? वो श्रमण है। वो सोन जो बनाए जाते हैं आकृति आज भी घरों के बाहर, वो उसी का प्रतीक है। 18वें तीर्थंकर अहरनाथ के समय में श्रमणों को आहार दे करके रक्षा सूत्र बांधा गया था। ये प्रक्रिया तब से आज तक लगातार चली आ रही है। धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करने का आज का ये पर्व है और हम लोग भी मंदिर में जाकर के और अपने हाथ से, अब भगवान तो बांधेंगे नहीं कि हमारी रक्षा कर दो, भगवान थोड़ी राखी बांधेंगे अपने हाथ में, तो अपन भगवान की तरफ से खुद बांध लेते हैं कि भगवान आपकी राखी बांधी, आप मेरी रक्षा करना, मैं आपकी क्या रक्षा करूंगा, आप तो स्वयं ही इतने अनंत बल वाले हैं, आप ही मेरी रक्षा करना, अर्थात मेरे भीतर धर्म बना रहे। और अगर हमारे भीतर धर्म बना रहे तो हम धर्म और धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य तो रहेंगे, जो धर्मात्मा है वो धर्म और अन्य धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य तो रखेगा ही रखेगा। इसलिए हम लोग स्वयं अपने हाथ से आज के दिन रक्षा सूत्र बांध लेते हैं। साधर्मी को भी आपस में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा कई जगहों पर है, कई जगह भूल गए हैं लोग, लेकिन परंपरा तो यही रही कि जिन 700 घरों में आहार हो गए 700 मुनि जनों के, उन सबको अन्य लोगों ने रक्षा सूत्र बांधे आपस में और इस तरह ये पर्व मनाया अत्यंत हर्ष के साथ। अगर अपन देखें तो आज ये घटना बहुत पुरानी हो गई लेकिन आज भी उपयोगी है। अगर हम उसको प्रतीक रूप में देखें तो चार कषायें उन चार मंत्रियों की तरह हमारे जीवन को आज भी मुश्किल में डाले हुए हैं। हमारा पुरुषार्थ जो पद्मराय है, पद्मराय 7 दिन के लिए कितने असहाय हो गए थे अपना राज्य दे करके, ऐसी तो हमने अपना राज्य, अपना जो आत्म स्वभाव है वो इन कषायों के हाथ में सौंप दिया है और हम ही मुश्किल में पड़ गए। अब अगर हम चाहें तो अत्यंत वात्सल्य के साथ में, जो कि विष्णु कुमार मुनि महाराज हैं, और इन कषायों को आसानी से जीत सकते हैं। अगर इन कषायों की पीठ टूटती है, रीढ़ टूटती है, तो काहे से टूटती है? सच्ची श्रद्धा ज्ञान इनके इन अकेले से नहीं टूटती। दो पैर तो सच्ची श्रद्धा और ज्ञान के हैं, लेकिन तीसरा पैर जब रखा था तब कषायें टूटी, तब अहंकार टूटा, तब मायाचारी गई उस बलि की। इसलिए सम्यक चारित्र से अगर हम चाहें तो आज भी इन कषायों को जीत करके और अपने स्वभाव की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रतीक अगर इस पर्व का हम लें तो आज भी ये पर्व हमारे लिए, हमारे आत्म कल्याण में, जीवन को पवित्र बनाने में कारण बन सकता है। फिर 15वीं शताब्दी के आसपास एक घटना और इसी दिन घटी, जिसमें कि किसी राजा से रक्षा सूत्र भेज करके अपनी रक्षा की याचना किसी रानी ने की और वो आए और उनकी रक्षा की। तब फिर उनको धर्म की बहन मान करके और राखी बांधी और बंधवाई। तब फिर ये भाई और बहन के बीच जो पवित्र स्नेह है, उस पवित्र स्नेह की सूचना के लिए ये पर्व तब से प्रसिद्ध हो गया और आज भी भाई बहन के बीच और रक्षा सूत्र। हम लोगों ने संबंध कैसे बनाए देखो तो, बेटी जब तक बड़ी नहीं हुई तब तक पिता उसकी संभाल करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, फिर उसे किसी के यहां ब्याह कर देंगे, वो उसकी रक्षा करेगा। लेकिन जीवन में एक क्षण ऐसा आएगा कि कोई तो हो पिता के बाद जो उस परिवार का रक्षा करता रहे, तो भाई को लगा दिया कि बहन का हमेशा ध्यान रखना, माने एक प्रोटेक्शन, एक जो सुरक्षा और प्यार। अहिंसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, अफेक्शन एंड प्रोटेक्शन इज नॉन वायलेंस। अहिंसा की परिभाषा बनाई है, हमने नहीं बनाई है, ये विदेश के किसी व्यक्ति की बनाई हुई परिभाषा है। अहिंसा के मायने हैं सबसे प्यार और सबकी सुरक्षा का भाव। यहां से घर से ये अहिंसा शुरू होती। संबंधों में अहिंसा देखिएगा कि सबके प्रति अपने परिवारजनों के प्रति इतना प्यार कि हम उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। सुरक्षा करना, उनको निश्चिंतता देना, उनको अभयदान देना, क्या इससे बड़ा कोई और धर्म है क्या? इसलिए इसी को हमने धर्म भी माना, वात्सल्य अहिंसा और प्रेम को धर्म माना। और ये अब भाई और बहन के बीच, लेकिन अब इसके भी मापदंड बदल गए हैं। हमें विचार करना चाहिए कि संबंध पैसे से नहीं बनते हैं। आज देखना पड़ता है कि पैसे की सुविधा होगी तो ही भाई और राखी बंधवाने जाएगा, बजट गड़बड़ाएगा तो न जा पाते हैं, चिट्ठी से आ जाती है। और अब तो चिट्ठी की आवश्यकता नहीं, कौन दो लाइनें लेके फैक्स कर दिया या कि ऐसे ही फोन पर बात कर ली। नहीं, वो जो चिट्ठी का इंतजार और फिर वो चिट्ठी लिखने का आनंद और फिर उसको पढ़ने का आनंद और उसकी प्रेजेंस फील करने का आनंद, वो भी एक आनंद हुआ करता था। इस दिन के लिए लोग एक एक वर्ष इंतजार करते थे कि बस आएगा और फिर हम आपस में एक दूसरे के प्रति अपना पवित्र प्रेम व्यक्त करेंगे। एक ऐसा संबंध है, छोटी सी भी बहन हो, बड़ी सारी बड़ा सारा भैया क्यों ना हो, छोटी सी बहन जब राखी बांधेगी तो उसके पैर छुएंगे और जिसके पैर छू लिए उसके प्रति अब दृष्टि खराब नहीं कर सकते। पिता पैर छूता है आज भी बुंदेलखंड में बेटी के, कि उसके प्रति अपना मन खराब मत करना अब। लेकिन यहां की परंपरा उल्टी, उल्टी तो नहीं कहूंगा, नहीं तो आप कहेंगे कि ले महाराज जी को अपना वहां का सब ठीक लगता नहीं है। यहां तो आप बेटी से पैर छुआ लेते हैं, बहुत आश्चर्य लगता है, या बेटी भी पैर छू लेती है, बहुत आश्चर्य लगता है। भगवान ऋषभदेव की दोनों बेटियों ने इसी बात से ब्याह नहीं किया था कि हमारे पिता को झुकना पड़ेगा दमान साहब को, और हमें जब ब्याह करेंगे तब पैर पूजना पड़ेंगे दमान और बेटी के? इसीलिए उन्होंने ब्याह नहीं किया कि नहीं आप कैसे झुकेंगे किसी के सामने। तो वो परंपरा रही कि हम सिर्फ सिर्फ एक जगह ही जिससे ब्याह होता है उसके पैर छुएगी कोई भी बहन, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की मां बनेगी कल के दिन। ये तीन ही रिश्ते सबसे श्रेष्ठ थे संसार चलाने के लिए। एक रिश्ता हमने बनाया, वो जीवन साथी का रिश्ता बनाया, उसकी पवित्रता भी जीवन के अंत तक बनाए रखी। ये रिश्ते हमें पवित्रता देने के लिए थे, हमारे मन को, हमारे मर्यादाओं को निर्धारित करने वाले थे। किसी से एक बार बहन बोल दीजिएगा, किसी से एक बार भाई बोल दीजिएगा, मन के भीतर जो एक पवित्रता आती है वो सब समझते हैं। लेकिन आज ये नहीं होता। आज हमने देखा कि अगर छोटी भी बहन है या कि बड़ी है, आचर्षी कभी भी दीदी लोग बैठी, सब कभी भी किसी भी दीदी वगैरह का आचर्षी नाम नहीं लेते। वो कुमेर वाली बहन को बुलाओ, वो उधर जबलपुर वाली बहन को बुलाओ, अशोकनगर वाली बहन को बुलाओ, ऐसे कहीं नाम ले सकते? नहीं लेते, एक रिस्पेक्ट है। लेकिन आज तो नाम लेने में हम वो समझते हैं कि हाँ नाम लेकर के बुला रहे मतलब प्यार बहुत है। नहीं, अलग ही है ढंग, ये रिश्तों की पवित्रता का ढंग ही अलग रहा। तो आश्चर्य होता है कि हम इन रिश्तों को, इसकी पवित्रता को आज कितना कायम रखेंगे। इसके लिए पर्व आते हैं, इसके लिए नहीं आते हैं। बच्चों के लिए तो नए नए कपड़े पहनने के लिए और बढ़िया से मिठाई विठाई खाने के लिए आते हैं, है ना। अकेले पर्व अच्छे कपड़े पहनने और मिठाई खाने के लिए नहीं भैया, इन पर्व से हमारे जीवन में कुछ अच्छा करने का भाव हमारे मन में आना चाहिए। मुझे 1989 की घटना याद है, मुझे पेपर में किसी ने कटिंग दी थी कि देखिए महाराज पर्व इतना महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि भाई को इस पर्व के 2 दिन पहले फांसी लगना थी, लेकिन मर्सी अपील की थी बहन ने कि ठीक है मेरे भाई ने अपराध किया है, उसे फांसी लगे, जो सजा मिली है वो मिले, लेकिन 2 दिन की और मोहलत दी जाए, मैं अपने भाई के हाथ में राखी बांधूं, फिर फांसी लगना हो तो लगे। और इस मर्सी अपील पर राष्ट्रपति ने, यह सत्य घटना है 89 की, और 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दी थी फांसी, रक्षाबंधन पर्व के बाद में फांसी दी गई थी, दी तो गई। लेकिन ये जो पवित्रता है वो पवित्रता, और हमें इतना दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमें एक संदेश देती है, हमें इससे ये संदेश भी लेना चाहिए और अपने जीवन में ऐसे संबंध बना करके, प्राणी मात्र अगर हमारा अपना हो जाए तो मानिएगा कि फिर ये जो संबंध की पवित्रता है वो हमारे जीवन को कितनी ऊंचाई देगी। हम तो इसको राग समझते हैं, ये ऐसा वाला राग नहीं है जो विषयाणु राग है, जो संसार वाला राग है, वो वाला राग नहीं है। ये जो पवित्रता का राग है वो तो जीवन को उठाने वाला है। इसलिए मैंने यहां भी कहा था कि शायद सब लोग तैयार भी हैं कि आपस में भी एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करेंगे, एक दूसरे को राखी बांधेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि बहन ही भाई को बांधे, भाई भाई भी बांधे, एक साधर्मी दूसरे को। कि हम हो सकता है कि संसार के कामों में अलग अलग हों, लेकिन यहां धर्म के क्षेत्र में हम सब एक हैं और एक दूसरे को अपना साधर्मी मान करके अपना एक दूसरे के निमित्त से धर्म ध्यान करेंगे, धर्म ध्यान में एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे इस पवित्र भावना से और अपन इस पर्व को मनाएं, तो हमारा ये पर्व मनाना सार्थक होगा। बताइए, आप कह रहे थे कि आप मत बोलो, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर धर्म ध्यान कैसे होता बताइए? आहार तो करूंगा कि नहीं करूंगा? जब आहार कर सकता हूं तो बोल नहीं सकता क्या? और तो सब काम करेंगे, बस ये कच्चापन है अपना, ये कच्चापन निकालो। शरीर तो आराम तलब है, मैं कल से कह रहा था कि इसको लिटाओ मत, लेकिन सबने फोर्सफुली कहा कि आप तो लेट जाओ। तो कल का 7 बजे का लेटा, सुबेरे 7:45 को उठ पाया मैं लेटता नहीं इसी वजह से। कितना भी कुछ हो जावे बैठा रहता हूं, काम करते रहता हूं तो काम चलता रहता हूं, और एक बार अगर इसको लिटा दिया फिर उठाना बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूं इस शरीर के साथ ये बेईमानी 24 साल से देख रहा हूं इसकी, इसलिए इसको तो सबके साथ ऐसी बेईमानी कर सकता है ये शरीर, लेकिन इसकी बेईमानी को जीतना अपने आत्मबल के द्वारा, ये आपसे कहूंगा। कैसी भी स्थिति हो हम धर्म ध्यान से क्यों विमुख हो, जब संसार के सब काम करते हैं वो तो नहीं रुकते कोई भी, तो फिर ये धर्म का काम भी हमें ऐसे अवसर आने पर भी और संपन्न करना चाहिए और पूरे उत्साह के साथ, पूरी उमंग के साथ में करना चाहिए, इसी भावना के साथ कि हमारे जीवन में ये पर्व खूब आवे और हम इनके माध्यम से अपने जीवन को पवित्र बनाने का संदेश देते रहें और जीवन अच्छा बने। बोले आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि महाराज।
गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह अग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। ज्ञान के प्रकाश में कुमार पर पास में कुमार से बतानी है
खुल जाओ अपने हाथ में ले जाओ ठीक है क्यों रहे
Thank you. जगह जगह